سبسکرائب کریں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی میرے بتائے ہوئے احکام پہ چلیں گے، شریعت پہ چلیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آخرت تو بعد میں ملے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. طیبہ میں مرغوب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، یعنی وہ زندگی صاف ستھری بھی ہوگی اور مزیدار بھی ہوگی. یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو لوگ حقیقت میں شریعت کو فالو کرتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، ان کی زندگی اللہ مزیدار بھی بنا دیتے ہیں، اور اس زندگی میں طہارت اور پاکیزگی صفائی بھی ہوتی ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، پاکیزہ کا مطلب پاکیزگی میں خود ایک لذت اللہ نے رکھی ہے. آپ جب میلے کچیلے ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، آپ کو خود ایک سکون اپنی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے. تو پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ باطنی طور پہ، روحانی طور پر آپ کو طہارت محسوس ہوگی. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کو مکمل، شریعت کی اتباع کرتے ہیں، ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور اندر کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں. اندر کے گناہ کیا ہیں؟ دل سے دنیا کی محبت نکالنا. دنیا کی محبت کیا ہے؟ مال کی محبت اور جاہ کی محبت. جاہ کا مطلب بڑا بننے کا شوق، شہرت، نام، اور مال کا مطلب پیسوں کے پیچھے بھاگنا، مال کو ویلیو دینا اتنی جتنی شریعت نے نہیں دی. کچھ نہ کچھ ویلیو تو ہر انسان دیتا ہے، وہ ضرورت بھی ہے، دینی بھی چاہیے، لیکن جتنی اوقات نہیں ہے مال کی، اس کو اس کی اوقات سے زیادہ بڑھا دینا. دیکھو، آپ کے گھر میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو ہر ایک کو اس کی اوقات کے حساب سے ڈیلنگ کرتے ہو نا. हाँ कर ले, करे यूं यूं कर, मुझे पता चल जाए रोजे का मतलब ये तो नहीं चुप ही बैठे रहेंगे। आपके घर में कोई बंदा आया, एसएचओ साहब आ गए, डीएसपी साहब आ गए, एकदम आप खड़े हो जाओगे, सर आइए बैठिए, आप हमारे यहां आए, हमारी खुशकिस्मती, चाय का पूछेंगे, खाने का पूछेंगे, सेल्फियां भी लेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे डीएसपी साहब के साथ बैठा हुआ हूं। आपके पास कोई उससे छोटे दर्जे का आदमी आ गया, आम पुलिस वाला आ गया, अस्सलाम वालेकुम सर खैरियत से हैं, तबीयत ठीक, चाय का कभी पूछेंगे कभी नहीं पूछेंगे। और पुलिस को जब आप चाय का कहते हैं तो चाय का मतलब कुछ और होता है, और वो भी जब कहते हैं ना चाय पानी तो मतलब क्या होता है, कुछ और होता है। आपके पास एक भिखारी आ गया, अगर आप इज्जतदार हैं तो भिखारी से भी इज्जत से मिलेंगे, धुतकारेंगे नहीं, लेकिन ना उसको आप अपने घर में बिठाएंगे। दिल में जगह देना तो बहुत दूर की बात, घर में भी आप उसको जगह नहीं देंगे, गेट पे खड़े खड़े अल्लाह का के लिए माफ कर दो ये कहेंगे ना। बहुत ज्यादा इज्जत दी भाई माफ कर दो, या 50 रुपए पकड़ा दिए उसको, 10 रुपए पकड़ा दिए, 5 रुपए पकड़ा, देखते भी नहीं उसकी तरफ, आया है हां भी एक इंसान है, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, धुतकारना नहीं चाहिए, या तो 50 रुपए उधर मुंह करके पकड़ा के निकल लोगे आगे, या ये होगा कि माफ करो भाई और अपना रास्ता आप ले लोगे। ज्यादा चिपक गया तो फिर गुस्सा आएगा आपको, भाई बोल दिया ना, क्यों खून क्यों पी रहा है, यही बोलोगे ना, अबे 50 रुपए दे तो दिए, क्या क्या विरासत लेगा मुझसे, कराची का होगा तो फिर ये स्टाइल में बात शुरू कर देगा, ये जायदादें तेरे नाम कर दूं। फिर वो और पैसे मांगे, अबे हट्टा कट्टा है तुझे, तो शर्म नहीं आती कोई काम धंधा कर जाके। जैसे जैसे चिपकेगा आप उसको और ज्यादा झुतकारोगे, बहुत ज्यादा चिपक गया फिर आप तैश में आ जाओगे, पहले लगाऊंगा क्या समझता है तू, तो 50 भी ऐसे ही दे दिए मैंने तेरे को। तो जिसकी जो आपकी नजर में औकात है उससे डीलिंग बोलो उसी औकात के हिसाब से हो रही है। तो अल्लाह मियां ये नहीं कहते कि दुनिया को धुतकारो, पैसा आ रहा है, शोहरत आ रही है, इज्जत आ रही है, दौलत आ रही है, ख्वाहिशात पूरी होनी, धुतकारना शुरू कर दो, लाते मारो, ना 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 ऐसे नहीं करो, ये बदतमीजी है, ये क्या है बदतमीजी है, ठीक है ना। बाज लोग ज्यादा फंटर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट ऐसे कराओ दुनिया को जैसे भिखारियों को कराते हो। कैसे कराओ लिफ्ट दुनिया को जैसे भिखारियों को कराते हो, दो टके की औकात नहीं है, दुनिया आ रही है, ठीक है जी आइए तशरीफ लाइए, चाय वाय का पूछ लो, चाय का भी नहीं पूछू, डीलिंग करो, पैसा वैसा आ रहा है ठीक है भाई आने तो अच्छी बात है यार, उसके लिए कोशिश भी करता है इंसान, ज्यादा फेरी कराने की कोशिश बोलो नहीं करो। ज्यादा फेरी अब पता कैसे चलेगा ज्यादा फेरी करा रहे हो कि नहीं करा रहे। ज्यादा फ्री का मतलब यह है कि भिखारी जब आपके पास आता है आप मिल लेते हैं, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, 50 रुपए चलो, अगर वो चला जाए तो बुलाते नहीं है, कहां जा रहा है मेरा दिल तोड़ के, है भाई मुझे छोड़ के तू ऐन आलम शबाब में मुझे तन्हा छोड़ के कहां जा रहा है, कभी ऐसी बातें की भिखारियों से, जा रहा है तो जाने दो, उसके पीछे पीछे नहीं भागते। उलमा कहते हैं, जो अहलुल्ला कहते हैं कि इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत कितनी है इसका पता इससे चलता है कि जब दुनिया छीनती है इसको गम कितना होता है, दुनिया जब छीनती है तो इसको गम बोलो कितना होता है, टेंशन ले रहा है ना अगर ये, اس کا مطلب یہ دنیا کا غلام ہے، دنیا اس کی غلام نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جب ہم سے ہماری دنیا چھنتی ہے تو ہماری بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو غم تو ہوگا نا. تو یہ کیسی بات کر رہے ہو مولوی صاحب کہ دنیا چھنے اور غم نہ ہو؟ کیوں غم نہیں ہوگا بھائی؟ آپ کی بیسک ضرورتیں گیس بجلی کا بل ابھی کراچی کی استھائی میں آؤں گا تمہارا باپ دے گا ہے بھائی، بچوں کی اسکول کی فیسیں تمہارا باپ دے گا، وین تو آ کے کھڑی ہو جائے گی نا، پیسے دو. ہم کہیں گے دنیا چھن گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، کہاں سے دوں؟ وہ کہے گا بھائی میں تو بچوں کی فیسیں چاہیے، کنوینس کا خرچہ چاہیے، دے بھائی. تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں غم کی ضرورت، بولو ہے ہی نہیں کوئی، میں ٹینشن فری ہوں. وہ کہے گا ٹینشن فری تو ہو گیا، مجھے تو ڈال دیا نا تو نے ٹینشن میں. بیگم کہے گی بھائی وہ دنیا چھن گئی ہے، راشن نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، اور عید بقرعید کے کپڑے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہیں گے بھائی مجھ سے دنیا کیا ہو گئی ہے، چھن گئی ہے. مفتی صاحب نے کہا بھکاری جب جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کو آواز نہیں دی جاتی، جا کے گلے نہیں لگایا جاتا، منتیں نہیں کی جاتی، آیا ٹھیک ہے نہیں تو پتلی گلی سے نکلے. بیگم مان جائے گی یہ بات، پھر آپ کو خود بھوک لگے گی، روٹی کھانے کا دل کرے گا، پیسے نہیں ہیں، پیٹ تو نہیں مانتا نا، آپ پیٹ کو بتا رہے ہو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی مجھے تو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو یہ کیسی بات کی جا رہی ہے بھائی، دنیا چھن جائے اور ٹینشن نہ ہو. تو دیکھو اتنی چھن جائے نا کہ جس سے آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو، پھر ٹینشن لو آپ. لیکن بنیادی ضرورتیں کہتے کس کو ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو. اللہ کرے یہ بات کھوپڑی شریف میں آ جائے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. اور یہ بات صرف پیغمبر بتاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ آپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر نہیں بتائیں گے، یہ بات یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر نہیں بتائیں گے. ٹک ٹاکر تو بتائیں گے کہ غریب بھی سے بغیرت ہوتا ہے، لیکن وہی ٹک ٹاکر جب مرے گا نا اور سب چھن جائے گا اور خالی کفن کے ساتھ جب قبر میں جائے گا تو اسے ساتھ والی قبر میں کوئی غریب ہوگا تو یہ کہے گا تو اور میں ایک جیسے ہو گئے ہیں، اب نہ غریب بھی سے بغیرت ہوتا ہے اور نہ یو سے الو ہوتا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے؟ اب آپ کو بی سے بغیرت کا پتہ نہیں، وہ ایک ٹک ٹاکر آ رہا ہے، وہ آج کل غریبوں کو بہت لتاڑ رہا ہے. تو بس جو بھی ہے اس کا مقصد اچھا ہوگا لیکن طریقہ بہت غلط ہے. تو آپ کو یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں. اچھا اکثر میں ان لوگوں پہ طنز کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں، کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو صحت کے نسخے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو. تو کہتے تو کیا مریخ سے آیا ہے بھائی، تو ہی بتائے گا، باقیوں نے کیا پڑھا ہے؟ یار آپ لوگ کو کیا ہو گیا؟ دیکھو میں اکثر ان لوگوں پہ رد کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. مطلب صرف میں بتا رہا ہوں، مطلب یہ کوئی الگ فلم آئی ہے مارکیٹ میں. بھائی تو اکیلا کیوں بتا رہا ہے یہ باتیں؟ دنیا کیا گھاس کھاتی ہے؟ کیا انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے؟ تو کہیں مریخ سے پڑھ کر آیا ہے کیا؟ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے. یہ سمجھ لو گے یہ بندہ بتانے والا گڑبڑ کر رہا ہے. تو اب وہی جملہ میں نے بھی زبان سے کہا، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں انجینئروں میں کوئی نہیں بتائے گا، علماء میں ہمارے علاوہ سب یہی باتیں بتاتے ہیں. ہم کوئی اکیلے مولوی پاکستان میں ایسے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں جو دوسرے علماء نہیں بتاتے. یہ باتیں پیغمبروں نے بتائی ہیں اور پیغمبروں کے وارث علماء ہمیشہ سے بتاتے آ رہے ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں، کل بھی بتائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کا علماء سے واسطہ کم پڑتا ہے. آپ کا واسطہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، انجینئروں کے ساتھ، سائنسدانوں کے ساتھ، پروفیسروں کے ساتھ. وہ لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں جس سے صبح و شام دنیا دنیا دنیا، تو دنیا کی محبت کے گٹر ہمارے دل میں ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ہوتے، سمجھ لو گٹر ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت کے چشمے ابل رہے ہیں. کہ یہ دنیا کی محبت اتنی خوبصورت چیز نہیں ہے کہ جس کے چشمے ہوں, اس کے گٹر ابلتے ہیں, گٹر بدبو ہے اس میں, اسمیل ہے. چشمے تو سوات مردان میں ہوتے ہیں بہترین. تو دنیا کی محبت کے جو دل میں ابلتا ہے نا جو چیز, وہ چشمہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتے ہیں؟ گٹر ہوتے ہیں, بدبودار گٹر. کیونکہ جب دنیا کی محبت آتی ہے ہوس پیدا ہوتی ہے, یہاں سے مال گھسوٹ لوں, کسٹمر کو الو بنا دوں, جھوٹ بولوں, کسٹمر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جیسے پتہ نہیں تجھے اللہ رزق دے ہی نہیں رہا. دیکھ لو نا آج کل کس طرح سے چیزوں کو بیچا جا رہا ہے. پہلے سعودی عرب میں بڑا استغنا تھا, عرب جب مال بیچتے تھے نا بڑی تمیز سے, شاپ پہ بیٹھے ہوئے آپ جاؤ آپ کو دیں گے, نہیں لینا نہیں لو, لینا ہے لو. اب وہ لوگ بھی باہر کا ماحول دیکھ دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. ابھی میں عمرہ کرنے گیا, اچھا یہ عمرے میں لوگ کہتے ہیں بال تو اتنے ہی ہیں آپ کے, یہ عمرہ کیسا عمرہ ہو رہا ہے؟ تو میں نے جب حج کیا تھا تو اس وقت دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا, حلق کی سنت پر عمل کیا میں نے, پھر عمرہ کیا, پھر حلق کی سنت پر عمل کیا. تو شریعت میں افضل یہی ہے کہ عمرے میں حلق کروایا جائے. حلق سمجھتے ہو؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. لیکن قصر بھی جائز ہے, تو اس لیے حلق کی سنت پر بھی عمل ہو گیا, قصر بھی ٹھیک. تو اس پہ کسی کو طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. قصر میں ثواب کم ہے لیکن جائز بالکل ہے. صحابہ نے نبی کی موجودگی میں بہت سو نے حلق کیا, بہت سو نے قصر کیا. تو جنہوں نے قصر کیا نبی نے ان پہ کوئی ملامت نہیں کی ہے. تو جو چیز شریعت میں لازم نہ ہو نا اس پہ ملامت بنتی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے اس میں تو چھ عمرے اور ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بال ہیں, یہ آپ نے کٹوائے کیا؟ تو میں نے اتنے اتنے بال پورے سر کے کٹوائے ہیں. اب آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہیں کہ پہلے اس سے بھی بڑے تھے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے بھی بڑے تھے تو وہ بہت زیادہ کٹوا کے بھی بڑے ہی ہیں, تو پھر چھوڑ دیں گے. پھر جب عمرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے, پھر کٹوا لیں گے. تو آپ جانے سے پہلے بالوں کا یا تو میرے سائز لے لیا کرو, ابھی ہیں کتنے اور عمرے کے بعد کتنے ہیں, تو واضح فرق ملے گا آپ کو, سمجھتے ہو؟ تو بہت سے لوگوں نے اس چکر میں عمرہ نہیں کیا, جدہ میں رہتے ہیں عمرہ نہیں کرتے, حالانکہ مکہ 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, کہ یار ہمیں ٹینڈ کرانی پڑے گی, ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. تو ان کو بھی بتانا مقصد ہے کہ قصر بھی جائز ہے, ٹینڈ کرائے بغیر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بعض لوگ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ٹینڈ نہیں کرا سکتے. حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ سر منڈا کے بھی ویسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں جیسے سر منڈائے بغیر لگ رہے ہوتے ہیں. خیر ہم ٹاپک سے نہ ہٹ جائیں کہیں. تو ہاں میں عرب کی, سعودی عرب کی بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ میں جب عمرے پہ گیا تو کہیں شاپ کے قریب ہم گزر رہے تھے, ایک عربی پیچھے پیچھے, ہاں بھائی حاجی صاحب یہ آپ ہماری شاپ میں آئے, ہماری شاپ میں آئے. میں نے کہا یار یہ عربوں کو ہم نے اس طرح دیکھا نہیں تھا, شاپ میں بیٹھے ہوتے تھے, آپ آئے موسٹ ویلکم, کیا چاہیے؟ یہ چاہیے, اچھا اتنے کا ہے, لینا ہے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. اب ان کو کیا ہو گیا پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ عربوں پہ یہ اچھا نہیں لگا, مزہ نہیں آیا. تو وہی تجزیہ کہ یہ لوگ بھی باہر جا کے جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا نا کسٹمر نکل کے باجی باجی, ہاں باجی کیا لینا ہے باجی, باجی کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا صدر میں, آپ دیکھو مارکیٹوں میں. پھر تھان کیسے کھولتے ہیں یار, جب آپ کپڑے کی دکان میں جاؤ ویسے ہی جا کے بیٹھے تھان پہلے کھولنا شروع کر دے گا, یہ کھولا دوسرا تیسرا, کیا کر رہا ہے بھائی, بھائی بس بیٹھو, ابے تو لپیٹے گا کیسے اس کو اتنی ساری دکان کو, کہہ رہے نہیں. پھر آپ بولتے ہو میں تو چائے پینے آیا ہوں, میں تو کپڑا لینے آیا ہی نہیں ہوں. پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تم آئے کس سلسلے میں ہو. بعض دفعہ ویسے ہی آیا ہوتا ہے کہ یار ویسے ہی تھک گیا تھا چلتے چلتے. خیر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کیسے تجارت کرتے ہیں, لیکن جب انسان میں ہوس ہوتی ہے, میں ان کو ہوس نہیں کہہ رہا کہ کئی جو تھان کھول کے رکھ دیتے ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بالکل کسی کے گھر تک پہنچ جانا, راستہ روک روک کے اس کو کہنا یہ لے لو یہ لے لو, یہ غیر مسلموں سے انگریزوں سے ہمارے ہاں آیا ہے, یہ مسلمانوں کا اصل طریقہ नहीं है, बहुत सी चीजें हमें हमारे पास गैर, उनका तो बिजनेस है, बिजनेस में वो सब कुछ करते हैं, ठीक है, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि इस्तिगना के साथ तिजारत करो, आप चीज इतनी मायारी रखें और उसको आप प्रोमोट करें, उसके एडवर्टाइजमेंट करें, उसके बाद जिसने लेना है ले, नहीं लेना आप आराम से बैठो भाई अपनी शॉप पे। तावीज रख रहे होते हैं दूसरों की दुकानों पे कि इसकी शॉप बहुत चल रही है, कोई तावीज रख लू बंद हो जाए, मेरी शॉप चल नहीं रही, दूसरे की जड़ें काटना शुरू कर दी होती, कस्टमर को चुपके चुपके बता रहे हैं बंदा ठीक नहीं है, मकसद है इसकी दुकान बंद हो जाए। तो मैं ये कर रहा था कि मुमकिन है आपके जहन में ये सवाल हो कि भाई जब दुनिया छीनेगी टेंशन तो होगी, बुनियादी जरूरतें जब पूरी नहीं होंगी तो फिर कैसे हो सकता है कि टेंशन ना हो, टेंशन तो होगी। तो खूब समझ लो, हमारी बुनियादी जरूरतें वो नहीं है जो डॉक्टर बताते हैं, हमारी बुनियादी जरूरतें वो नहीं है जो मआशी माहिरीन बताते हैं, इकोनॉमिक्स बताते हैं, माहिरीन मईशत बताते हैं, हमारी बुनियादी जरूरतें वो नहीं है जो ताजिर बताते हैं, हमारी बुनियादी जरूरतें वो हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। आपने आखिरत को सामने रखकर जरूरत बताई, और आज दुनिया में जो भी बताता है कि ये आपकी जरूरत है वो आखिरत को सामने नहीं रखता, बल्कि वो मौत को भी सामने नहीं रखता है, वो मौत भी सामने नहीं रखता है। आखिरत तो बहुत दूर की बात है, वो दुनिया को मुसाफिर खाना समझ के बता ही नहीं रहा होता, वो ऐसे बताता है जैसे हमेशा बोलो यहां रहे। मिसाल के तौर पर आप जब घर बना रहे हैं तो सरिये वाले से जब आप रब्ता करेंगे बुनियादों में सरिया डालने के लिए, तो वो आपको बताएगा भाई इतना सरिया डालो, उससे क्या होगा 200 साल तक ये बिल्डिंग चलेगी। तो वो देख रहा है कि कैलकुलेशन कर रहा है आपकी एज कितनी है, हैं भाई, उसको इससे गरज थोड़ी है भाई, उसको पहनाना है, उसको सरिया क्या करना है, पहनाना है, और आप पहन के आ जाते हो, आप करोड़ों रुपए लगा देते हो, हालांकि आपकी हड्डियां भुरभुरी होना बोलो शुरू, उसमें कैल्शियम खत्म होना शुरू, डलवाना तो अपनी हड्डियों में सरिया था, डलवा कहां दिया, उधर डलवा दिया। हालांकि अभी पता है यार थोड़े दिन में जनाजा उठने वाला है, थोड़े दिन में चारपाई घर से निकलने वाली है, और देख भी रहे हैं निकलते हुए, उसने बनाया था निकल लिए। अक्सर जो लोग घर बनाते हैं बेचारों को खुद रहना नसीब नहीं होता। फिर मैं कहूं घर बनाने के मैं खिलाफ नहीं हूं, मेरे बयानात को लोग गलत चला देते हैं, वो उसकी मैं डिटेल कई बार बयान कर चुका हूं, वो भी मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सरिये से दिल लगाना, घर के पिलर से दिल लगाना, इतनी मोटी दीवारें, इतना मोटा पिलर, खुद भी तो इतना मोटा है, मरेगा अभी थोड़े दिनों में, जो ज्यादा मोटा होता है डॉक्टर कहते हैं उसके चांस जाने के, क्या माजरत के साथ, उसके चांस पतले फिर भी निकल लेते हैं, पतलों को हमने देखा है कुछ ना कुछ गुजारा चला लेते हैं ना आगे तक, क्योंकि पतला जो है ना हर जगह से निकल जाता है, तो फरिश्ते से भी वो थोड़ा सा यूं करके निकल जाता है, फरिश्ता कहता है चल जाने दे यार। एक किसी ने बड़ी जबरदस्त कमेंट्स, वो एक पोस्ट चलाई थी बड़ी खानदानी, ये मैं उन मोटों के खिलाफ ये बात कर रहा हूं जो बाय नेचर मोटे नहीं है, खूब समझ लें, जो भारी जिस्म के मोटे लोग होते हैं ये जिनके पेट निकला हुआ होता है, उनकी दो किस्में हैं, एक वो किस्म जिसको शरीयत बुरा कहती है, एक वो किस्म जिसको शरीयत बुरा नहीं कहती। जो लोग कुदरती तौर पे भारी जिस्म के होते हैं, पेट बढ़ा हुआ होता है कुदरती तौर पर, खा खा के नहीं कुदरती तौर पर, ऐसे लोग सहाबा में भी थे, मुहद्दिसीन में भी थे, ताबईन में भी थे, आज भी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हमने देखे हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, बहुत तकवा, लेकिन उनका पेट बढ़ा हुआ है, ये कुदरत की तरफ से है, इस पे किसी को मलामत जायज बोलो नहीं है। जैसे इंसान है किसी की नजर तेज होती है, किसी की कमजोर होती है, किसी की फिटनेस बड़ी अच्छी होती है, किसी की कम होती है। तो हदीस में आता है अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल को तुम्हारे जिस्म को नहीं देखते कि मोटे हो पतले हो दुबले हो काले हो गोरे हो, ये नहीं दे। हम लोग तो फिटनेस देखते हैं सामने वाले की, अल्लाह नहीं देखते। अल्लाह क्या देखते हैं? आमाल और तुम्हारा दिल, दिल में क्या है और जाहिरी अमल कैसा है, अल्लाह इसको देखते हैं। तो इसलिए मैं जब ये बात करता हूं तो ऐसा ना हो कोई भारी जिस्म का हो आपके दिल में उसकी बुराई आ जाए। आज भी मैं ऐसे उलमा को जानता हूं, बहुत परहेजगार हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन उनका पेट भी निकला हुआ है, उनकी बॉडी भी भरी हुई है कुदरत की तरफ से। ये अंग्रेजों में भी होते हैं, डॉक्टरों में भी होते हैं। एक हकीम साहब आए 75-80 साल के, 80 साल उनकी उम्र होगी, चंद साल पुरानी बात है, और कहने लगे मैं एक शादी करना चाहता हूं, कोई रिश्ता हो तो बता दें। मैंने कहा भाई मैं रिश्ते विश्ते नहीं कराता। किबला हकीम साहब, अच्छा उनका पेट भी निकला हुआ, जिस्म भी गोल, लेकिन एज बहुत और फिट फाट चल फिर रहे हैं और जबरदस्त बातचीत, लगता था कि जवान है, अंदर से जरखेज हैं। तो ऐसे होते हैं, लेकिन फिटनेस क्या है? आड़ी तिरछी है, वो कुदरत की तरफ से है। ऐसा नहीं कि वो खुराकें फोड़ रहे हो, बस कुदरत की तरफ। अच्छा बाज लोग खुराकें फोड़ के भी फिट रहते हैं, ये भी कुदरत की तरफ से है। ऊट पटांग खा रहे होते हैं फिट फाट रहेंगे, लेकिन एक मोटा वो होता है कि जिस पर वईदें हैं, जिस पर क्या है बोलो, वईदें, बड़ी शदीद वईदें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी मोटे को देखा जो उनका आलिम था, आपने फरमाया क्या तूने तौरात में पढ़ा नहीं है कि अल्लाह को मोटे पेट वाले से नफरत है? आलिम भी था और माशाल्लाह, समझ रहे हैं बात को, तोंद निकली हुई थी, वो खा खा के हुआ था और हराम खा खा के, क्योंकि यहूद के बाद उलमा ये करते थे लोगों से हदीये नजराने लेने के चक्कर में उनको शरीयत तहरीफ करके बताते थे, वो बातें बताते थे जो लोगों के मतलब की हो, जिसपे पब्लिक खुश हो जाए। इन कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबानी लयाकुलून अमवालन नास बिल बातिल। ए ईमान वालो, यहूदियों में ईसाइयों में बहुत से उलमा ऐसे हैं, सारे उस वक्त भी खराब नहीं हुए थे, बहुत से उलमा ऐसे हैं जो ना हक तरीके से लोगों का माल खाते हैं, रिश्वतें लेते हैं उनसे, गलत गलत मसले बता के पब्लिक को खुश करने के लिए। आज तलाकें दे दो, आपको अपनी मर्जी का फतवा मिल जाएगा, कुछ भी कर लो, हर जगह आपको अपनी मर्जी का फतवा मिल जाएगा। और गवर्नमेंट में हमेशा ऐसे कुछ लोग सरकारी सतह पे होते हैं जिससे गवर्नमेंट अपनी मर्जी का इस्लाम पास करवाती रहती। अय्यूब खान के दौर में जब आयली कवानीन बनने थे, अंग्रेज के दौर में इस्लामी कवानीन जो आयली खानदानी कवानीन है वो ठीक थे, लेकिन जनाब अय्यूब खान ने क्या किया, उनको चेंज करके सारा बेड़ा ही गरक कर दिया, निकाह तलाक के अहकाम का बेड़ा गरक कर दिया। यहां उलमा ने एहतजाज किया ये तो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो मिस्र से एक मौलवी साहब इंपोर्ट किया अय्यूब खान ने, वो जो बड़े लिबरल किस्म के थे, गांधी टाइप के मौलाना थे, वो मिस्र से इंपोर्ट हुए, पा लेके ठप्पा लगवा के बेड़ा, बोल लो ना यार, आयली कवानीन का बेड़ा गरक कर दिया, तलाक के अहकाम इद्दत के अहकाम ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन वो मार्केट में चले नहीं, पब्लिक मानती अब भी नहीं है उसको। जनरल मुशर्रफ का दौर आया, अब ये जो खुला है उसमें भी मैं कई बार बता चुका हूं, उसकी एक शरीयत में एक प्रोसेस है, तलाक का हक अल्लाह ने मर्द को दिया इख्तियार, औरत को नहीं दिया, चंद सूरतों में जज को दिया है, लेकिन वो सारा जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, बेड़ा गरक कर दिया, मुकम्मल औरत को तलाक का इख्तियार दे दिया गया है, जब भी जाए खुला ले पतली गली। एक छोटा सा वाक्य बता दूं, हो क्या रहा है सोसाइटी में, फिर मैं आगे अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा। जनरल मुशर्रफ साहब ने जो हरकत की कि मुकम्मल, जब भी औरत कोर्ट में जाएगी ना, जब चाहेगी, जज पाबंद है उसको खुला की डिग्री देने पर, इसके अब साइड इफेक्ट क्या होना शुरू हो गए। एक केस आया चंद दिन पहले, एक आदमी की शादी हुई, बच्चा हुआ, बेगम से बड़ी मोहब्बत थी, 2-3 करोड़ की जायदाद बेगम के नाम कर दी। लोग कर रहे होते हैं कि यार मेरा तो जीना मरना तुम्हारे साथ है, अच्छे लोग कर देते हैं ये काम, हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, ये क्या मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये क्या होता है, बस तुम्हारे नाम से ले ली। आज भी बहुत लोग करते हैं, बेगम साहिबा के पास जब इतनी सारी प्रॉपर्टी आ गई, बच्चा भी हो गया, बेगम साहिबा गई कोर्ट, खोला की डिग्री लेके पतली गली से, कोर्ट कहती है मेहर वापस कर दो। मेहर 25,000 चल रहा है मार्केट में। मेहर क्या चल रहा है? 25,000। एक साल पहले निकाह पड़ा था उसको भी 25,000 था, अब भी क्या है 25,000 में दो गुटके नहीं आते मेरे भाई, लेकिन वो चल रहा है 25,000 रुपए, दो चार गुटके की कीमत आप समझ लो। अभी तो मैं मेहमानों को चाय पिलाता हूं ना, तो जो बिल बन के आ रहा है, मुझे लग रहा है अपनी इतनी महंगी चाय हो गई है, पिलाना छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, आप कहीं गम ना करें। लेकिन उसने जब बिल बनाया ना हमारे गार्ड ने कि यार ये, मैंने कहा ये क्या मैंने क्या मंगवाया है, क्या मैंने वलीमा किया है क्या? क्या नहीं, ये चाय 150 रुपए का कप चाय का यार। हालांकि पहले कप टोटल 150 रुपए का आता था, अब उसमें सिर्फ चाय 150 की आ रही है। तो खैर बातें इधर उधर बहुत होने लगती हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेगम को 1.5-2 करोड़ और ये सब माशाल्लाह, बेगम साहिबा ने थोड़े दिन में कहीं सेटिंग, या वैसे ही सेटिंग नहीं भी हुई होगी, खुला लिया, वो 1.5 करोड़ भी गए क्योंकि प्लॉट तो उसके नाम है, और उल्टा बच्चे का नान नफका खर्चा बंधवा दिया 18 साल की उम्र तक। अब कौन मखनचू देगा ये खर्चा? ये शोहर देगा, क्या बोलूं इस बेचारे को मैं, जबकि तरबियत उस बच्चे की मां की मर्जी से होगी। समझ में आ रही है बात? तरबियत किसकी मर्जी से होगी? मां की मर्जी से होगी। खर्चा ये देगा, कंट्रोल किसका होगा? मां का होगा। और मां अगर कहीं और शादी कर लेती है, कानून में लिखा हुआ तो है कि बाप को मिल जाएगा, मिलता प्रैक्टिकली नहीं मिलता। बाप को यह साबित करना पड़ता है कि मैं, वो साबित करने में बच्चा 18 से बड़ा का हो जाता है और बाप के सर के बाल गिर के खत्म हो जाते हैं। प्रॉपर्टी भी गई, बेगम भी गई, बच्चा भी मार्केट से शॉर्ट, और खर्चा भी ये कमबख्त देगा। नहीं देगा जेल हो जाएगी इसको, नहीं देगा तो क्या होगा? कई लोग जेल में पड़े हुए हैं इस चक्कर में और दांत पीस रहे हैं वहां बैठ के। हुकूमत खुद लोगों को डिप्रेशन का मरीज बना रही है, और ये ना रोका ना, मैं आपको बता रहा हूं कि कत्लो गारा शुरू हो जाएगा मुल्क के अंदर। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाएगा। मेरे पास कितने केस आए, मर्द कह रहा है मैं जेल से निकला, मैं इसको अपनी बीवी को कत्ल करूंगा, मैंने रोका उसको, ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए, लोग कह रहे मैं जान से मारूंगा इसको। तो मुशर्रफ साहब ने कर दिया काम, ना उलमा से पूछा, ना क्योंकि जरूरत नहीं है ना, कोई 2-3 मौलवी अपनी मर्जी के मिल गए होंगे, टप्पे छप्पे लगवा दिए होंगे, चलो जी इस्लामी हिसाब से कर दिया हमने। इसके खिलाफ एहतजाज करो, ट्विटर पे एहतजाज करो, फेसबुक पे एहतजाज, ये तुम्हारा खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी। इसका रिजल्ट औरत के हक में खतरनाक निकलेगा। कैसे खतरनाक निकलेगा? जब मर्द को पता चलेगा ना कि यार मैं अगर अपनी बेगम, अभी मर्द को पता ही मेरी है, मेरी मर्जी के बगैर जा नहीं सकती, मर जान निछावर करता है, भाई बेगम ये सब तुम्हारा है, मरने से पहले बीवी के लिए घर का इंतजाम कर रहे होते हैं। लेकिन जब मर्द को पता चल गया ना कि तलाक का हक इसके पास भी है, वो हाथ खींच लेगा अपना, वो कहेगा इसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो भाई, कोई भरोसा नहीं है कल इसकी नीयत चेंज हो जाए। टाइम पास करो, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज मिल गई, टाइम पास करो, ज्यादा फ्री कराने की जरूरत, ये होगा कल जब वाकियात आएंगे ना, यार उसने प्रॉपर्टी दे दी थी, उसकी बेगम ने खुला ले लिया। मैं, मुझे पता है सारी औरतें ऐसा नहीं करती, लेकिन कुछ तो करेंगी ना, और आपको क्या पता चलेगा कि मेरी वाली करेगी कि नहीं करेगी? नीयतें बदलते देर थोड़ी लगती है। तो नतीजा क्या, आदमी रिजर्व रहेगा, भाई शादी हो गई है टाइम पास, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ क्या होता है टाइम पास, प्रॉपर्टियां थोड़ी नाम कराई जाती है गर्लफ्रेंड के, एक आध चाय वाय का कप पिला दिया जाता है, अब तो चाय इतनी महंगी हो गई अब गर्लफ्रेंड को कोई चाय पिलाने के लिए भी तैयार नहीं है, हकीकत है। अब गर्लफ्रेंड बोले चाय आधी चाय तू आधी तू पैसे देगी आधी, या तो तेरा बाप देगा या मैं या तू देगी, तो महंगाई इतनी बढ़ रही है। तो इसका नुकसान होगा औरत को, मर्द शादियां करना छोड़ेंगे, करेंगे तो वो वफाएं बेगम के साथ नहीं करेंगे। ये जो इस्लाम ने मर्द को डिवोर्स का हक दे दिया ना, ये बहुत बड़ा एहसान औरत पे किया है। मर्द को एहसास है यार जैसी है किसकी, मेरी, ये मेरे होने ने बहुत ज्यादा हुकूक दिलवा देते हैं। खवातीन मिसालें देती हैं, वो फला औरत पे इतना बड़ा जुल्म हो गया, फला पे जुल्म हो गया उसका, भाई वो चंद पे होता है, 100% تو دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن اس کا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ مرد وفا کرنا ہی چھوڑ دیں, اس سے تو سارا سسٹم کیا ہو جائے گا, تباہ. اور جب سارا سسٹم تباہ ہوگا پھر ہوگا کیا, جب مرد شادی کرنا چھوڑیں گے کہ یار وفا کرنا چھوڑیں گے تو ادھر ادھر پھر عورتوں میں دل بہلائے گا آدمی, اور پھر بالآخر خاندانی نظام ایسے ہی تباہ ہوگا جیسے یورپ کا تباہ ہو گیا, اور اس کا سارا فائدہ کتے اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ پھر میں بھی بڑھاپے میں کتے پالوں گا, آپ بھی بڑھاپے میں بولو نا کتے, کیونکہ بیگم تو چلی گئی کھلا لے کے, بچے بچے ہو نہیں رہے, تو تنہائی, وفا وفا مارکیٹ سے کیا شارٹ, تو چند بڈھے بڈھی بچیں گے, جیسے انگریزوں میں بھی پارکوں میں کچھ بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے وفا کی ہوتی ہے, وفا بھی انہوں نے 50 سال کے بعد شروع کی ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. 50 سال تک ادھر ادھر منہ مارتے رہے ہوتے ہیں, 50 سال 55 سال کے بعد چلو یار ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا کر لیتے ہیں شادی. پھر ان کی شادی کے بعد بھی عجیب سے حساب کتاب ہے, اب وہ کیا بتاؤں یار میں. آج کل انگریزوں نے بھی بیان سننا بعض لوگوں نے شروع کر دیا, تو میں زیادہ نہیں ان کو وہ بتاتا. بہرحال پھر کچھ بڈھے بڈھی پارکوں میں نظر آئیں گے آپ کو, ہمارے ہاں بوڑھا بھی بڈھیاں بھی بیچاری پارکوں میں اپنے بچوں کے ساتھ, پوتے نواسوں کے ساتھ, بہوؤں دامادوں کے ساتھ ہوتی, وہ اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور یہ بھی خوش قسمت ہوں گے جو اب تک ساتھ چپکے ہوئے ہیں, بھلے 50 سال کے بعد چپکے لیکن چپک تو گئے نا. لیکن آپ کو بہت سے لوگ پارکوں میں ایسے نظر آئیں گے, بڈھا ہوگا کتا لے کے اور بڑھیا ہوگی کتا, کتے کے مزے, کیونکہ کتے کو وہاں وہ پروٹوکول ملتا ہے ہمارے کتے سوچ بھی نہیں سکتے, کتے کہیں کے جو پروٹوکول یورپ میں کتے کو ملا ہے نا, ہمارے یہاں وہ نہیں ملتا, وہ میاں کو نہیں ملتا وہ پروٹوکول, پھر بھی کتا بنا ہوا ہوتا, وہ کتا بنتا ہے اس کی شاید مجھے وہ پروٹوکول مل جائے جو یورپ میں کتے کو ملتا ہے. تو یہ جو عدالتی کھلا ہے نا, اس کا بالآخر فائدہ کس کو ہوگا؟ ملک کے کتوں کو فائدہ ہو. بڑھاپے میں ہم اچھے اچھے سے کتے سنبھالیں گے, تنہائی دور کرنے کے لیے عورتیں بھی اچھے اچھے سے کتے سنبھالیں گی. یہ جو پیارا سا نظام اللہ نے بنا کے دیا ہے جس کو اسلام پروموٹ کرتا ہے, اس نظام کی ایسی کی بولو تیسی. اب جب تک یہ خلا کا قانون بدلتا نہیں ہے, ایک کام آپ لوگ کر لو, وہ کہہ کے پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک کام کر لو, اس عورت سے نکاح کرو جو اسلام کو مانتی ہے, وہ کبھی عدالتی خلا پہ اعتماد نہیں کرے, وہ مفتی سے فتویٰ لے گی کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. ایسی بھی عورتیں ہیں الحمدللہ کورٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرتی ہیں کہ شریعت میں خلا ہوا کہ نہیں ہوا, علماء نے کہہ دیا ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہو گیا بھائی نبھا کرنا ہے. کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا بھائی, اتنی اتنی سی باتوں پہ طلاقیں اور خلے ہونا شروع ہو جائیں. عورتیں کہتی ہیں مرد کو بھی تو حق ہے کہ جب چاہے چھوڑ دیتا ہے, مرد کو حق ہے لیکن مرد اپنا یہ حق استعمال نہیں کرتا, بہت کم ریشو ہے, بہت کم ریشو ہے, 100 میں 1% لوگوں کے ہاں بھی طلاقیں نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ مرد کو یہ جو احساس ہے نا کہ یہ میری ہے, یہ احساس اس کو بیوی کو روکنے پر مجبور کرتا ہے, یہ احساس مجبور کرتا ہے کہ بھئی میری فرما بردار بن کے رہے گی, میری چند بیسک چیزوں میں اطاعت تو ہر عورت کر رہی ہوتی ہے جو بھی تھوڑی سی بھی جس میں غیرت ہے, باقی 100% تو بھائی دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں ہوتا, کوئی ٹھیک نہیں ہوتا دنیا میں 100%. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قانون چینج ہو نہ ہو, آپ کم از کم اپنی سوسائٹی کو اپنی فیملی کو بچاؤ, تو اس کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرو, سمجھتے ہو, جس کو یہ ہو کہ نکاح ٹوٹتا ہے تو یہ حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. اللہ جب کہے گا کہ نکاح ختم تو میں مانوں گی, کورٹ کے کہنے سے میں نہیں مانوں گی. جج کو یہ رائٹ نہیں ہے, جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو ڈیورس نہیں دے سکتا جج, اتنا نہیں حکومت کا اسلام نے پابند بنایا آپ کو کہ حکومتیں فیصلہ کرنا شروع کر دیں کون کس کی بیوی ہے کون کس کی بیوی نہیں ہے. تو خیر ہم آگے چلتے ہیں, تو بات کیا چل رہی تھی, کچی تو پکڑ کے رکھا کرو نا یار جہاں سے بیان چل رہا ہو. ہاں موٹے کی بات کر رہا معذرت کے ساتھ, دیر آر ٹو ٹائپس آف موٹاز, موٹوں کی کتنی قسمیں ہیں, ایک جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے. میں نے بتایا ہمارے بعض اساتذہ ہیں, بعض بزرگان دین ہیں, بڑے نیک ہیں قدرت. ایک وہ ہے جو یہودی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہودی کی توند کیا تھی, وہ عالم کی نکلی ہوئی تھی. قرآن نے بھی کہا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل, بہت سے یہود اور نصارہ کے عالم ایسے ہیں, سارے نہیں بہت سے تھے, جو لوگوں سے ناحق پیسہ کھاتے تھے. تو یہ پیسہ غلط فتویٰ دے کے, جیسے آج کچھ سرکاری قسم کے مولانا ہیں جو عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں, نہیں جی یہ اکارڈنگ تو اسلام یہ جائز ہے. بعض لوگوں کا مقصد عورتوں کو خوش کرنا ہے, بعض کا مقصد حکومت کو, کیونکہ بعض جب کہتے ہیں نا یہ خلا ولا نہیں ہے, بس عورت کو بھی پورا پورا حق ہے, تو پھر وہ خواتین بھی خوش ہوتی ہیں. حالانکہ یہ چیز خواتین کے خلاف جا رہی ہے, ابھی خوشی ہو رہی ہے, بعد میں پتا چلے گا ہوگا کیا آپ کے ساتھ. عالم کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے اس اسٹیٹمنٹ سے, اس فتوے سے کون سا طبقہ خوش ہوگا, کون سا. اللہ معین اختر کو کی مغفرت کرے, مزاحیہ ایکٹر جو تھا, بعض باتیں بڑی خاندانی کر گیا. معین اختر سے کسی نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ عورت کی آزادی کے قائل ہیں یا نہیں ہیں, معین اختر دو نمبر آدمی ہوتا تو کہتا یقیناً عورت کو آزاد ہونا چاہیے, اور پھر زبردست کمنٹس آتے. اس نے کہا میں اتنا قائل ہوں جتنا اسلام نے اجازت دی ہے, اس سے زیادہ کا میں قائل نہیں ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ میں اتنا قائل ہوں جتنی اسلام نے اجازت دی. ایسا خاندانی جملہ, یہ یہاں بیٹھ کے کہنا آسان ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا بہت مشکل ہے. وہاں ماحول الگ ٹائپ کا ہے, وہاں حق بات کرنا بہت مشکل کام ہے. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط. ہاں اسلام نے مصلحتاً خاموشی کی اجازت دی ہے, ہر حق بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی, بعض دفعہ اس کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کسی مصلحت سے وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں, لیکن غلط بیانی کرنا کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ایک تبلیغ کا موقع نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے کہ ابھی بات صحیح ہے لیکن ابھی بے موقع ہو جائے گی, اس میں خاموشی. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اس وقت کہہ دی جائیں تو اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے, سمجھانے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, تو انسان کہتا ہے ابھی خاموش رہو, کیونکہ ابھی بات بتائی تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کے. تو مصلحتاً خاموشی یہ بھی مصلحتاً جائز ہے جب مصلحت ہو بھی. بعض دفعہ مصلحت نہیں ہوتی, مداہنت ہوتی ہے. مداہنت الگ چیز ہے, مصلحت الگ چیز ہے. مصلحت کا مطلب واقعی اس میں فائدہ ہو خاموش رہنے میں, مداہنت کہتے ہیں فائدہ بولنے میں ہے لیکن آپ اپنی لالچ میں یا ڈر کی وجہ سے آپ نہیں بتا رہے, تو یہ مداہنت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی عالم کو دیکھ کر, اس کی توند کیا تھی, نکلی ہوئی تھی ناجائز کھانے کی وجہ سے. ناجائز آدمی زیادہ ہی کھاتا ہے, ناجائز تھوڑا نہیں کھاتا. تو ایک پیٹ وہ ہے جو قدرتی طور پر ہے, اور ایک وہ ہے جو کھا کھا کے نکلا ہو. ایک نے پوسٹ بڑی اچھی چلائی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز سنت کے مطابق کیا ہونا چاہیے, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیٹ کا سائز سنت کے مطابق. بولو خوب سمجھ لو, جیسے داڑھی کا ایک سائز ہے نا, اسلام میں پیٹ کا بھی کیا ہے, سائز ہے. اس سائز سے آپ اس پیٹ کو بڑھا, یہودی نے بڑھا لیا تھا نا. ہمارے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے کسرا کے ایلچی, ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھیں, آپ نے نفرت سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا تم تباہ ہو جاؤ, تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا, داڑھی نہیں تھی نا. اور یہ جو یہودی عالم تھا اس کا پیٹ کیا تھا, کھا کھا کے, یہ ذہن میں رکھو, کھا کھا کے پیٹ نکلا ہوا تھا. تو آپ نے اس کو بھی برے القاب سے یاد کیا, اس کو بھی تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف داڑھی میں یہ نہیں دیکھنا کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, پیٹ میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے بخاری کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ, پھر وہ جو اس کے بعد, پھر اس کے بعد, پھر برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. یعنی صحابہ, تابعین, تبع تابعین, یہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اس کے بعد برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی, پھر کیا ہوگا, اس برائی میں جھوٹ پھیلے گا, اور کیا, یکثر السمن, موٹاپا پھیلے گا. यानी मोटापे को भी आपने किसमें शुमार किया है? बोलो ना यार, बुराई में। क्यों? दुनिया की हवस बढ़ेगी, खाने का शौक बढ़ेगा। जरूरत चार खजूरों से पूरी हो रही है, खा पूरे पूरे डब्बे राय। शादियों में देखो ना आप, शादियों में जो हालत होती है, खाना जब खुलता है ना, जैसे रेसलिंग का मुकाबला नहीं होता, मुकाबला जो हमने मंजर देखा है, आपके अलावा की बात कर रहा हूं, आप लोग नहीं ऐसे होते होंगे, ऐसे मंजर होता है जैसे अभी एक वो YouTube पे वीडियो भी आई थी, तंबू गिर गया, देगे उलट गई। इज्जतदार आदमी क्या करेगा भाई, इज्जत के साथ खाओ, बैठा रहेगा, कहेगा जब रश कम होगा तो मैं उठ के चला जाऊंगा। लेकिन कौन बर्दाश्त करेगा? इसमें दो खतरे होते हैं रश कम होने में, पता नहीं खत्म ना हो जाए, एक खतरा ये, खत्म हो गया तो क्या करेंगे। दूसरा खतरा ये होता है कि बोटियां मार्केट से शॉर्ट। तीसरा, चलो अगर बोटियां शॉर्ट नहीं भी हुई तो अच्छी अच्छी बोटियां शॉर्ट हो जाएंगी मार्केट से, मेरे हिस्से में खराब खराब माल आएगा, तो ये खतरात होते हैं। तो इज्जतदार आदमी क्या कहता है, भाई इज्जत के साथ धोने वाले बगैर बोटियों के ठीक है ना, वो बेइज्जती के दस निवालों से बेहतर। फिर एक और गड़बड़ क्या होती है, ये सब हवस है हवस। फिर एक और गड़बड़ क्या होती है, जो पहले भाग के कामयाब हो गया ना बिरयानी तक पहुंचने में, सबको धकेल के पहुंच गया, वो जीत गया मैच, वो उसको पता है कि मैं इतना नहीं खा सकता, लेकिन प्लेट में भर भर के निकालेगा और सारी बोटियां उंडेल लेगा उसके ऊपर। क्यों? उसको ये खतरा है कि अगर मैंने थोड़ा निकाला तो हो सकता है अगले चक्कर में कुछ ना मिले, जबकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इसके साथ, तजर्बे बता रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी डर होगा, एक लाशऊर में खौफ, कैसा ना हो कि खत्म हो जाए और बोटियां भी भर लेगा इतनी ना, कैसा ना वो अगले चक्कर में गोश्त ही ना मिले। भाई ये बहुत बुरी हरकत है काइंडली, ये इंसानों पे सूट नहीं कर, आराम से बैठे रहो जहां इतनी देर भूख। देखो इस्लाम अगर कोई हुक्म देता है ना, उसमें सेहत का कभी नुकसान नहीं होता। इस्लाम में खाना सुन्नत है या भूखा रहना सुन्नत है, मुझे ये बता दो, कोई एक हदीस बताओ जिसमें नबी ने फरमाया जो पेट भर के खूब रज के खाता है वो जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब किताब के जाएगा, कोई एक हदीस है ऐसी? भूखा रहने के फजाइल हैं। नबी ने फरमाया मैं चाहता हूं एक वक्त खाने को मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूं, एक वक्त भूखा रहूं तो सबर का सवाब लूं। साबिरीन और शाकिरीन दोनों जन्नत में जाएंगे ना, तो कभी सबर कभी क्या है शुक्र। हमारे नबी के साथ तो ऐसे ही होता था, कभी भूख से। अच्छा डॉक्टरों ने बहुत डरा दिया है भूखा रहने से, एक्चुअली आपके ना ये कम होता है, ये वाले टोपी ड्रामा है, कुछ भी कम नहीं होता भूखा रहने से, खाना बहुत जरूरी है एक्चुअली, ये टोपी ड्रामा। सहाबा ऐसे हालात भी आए हैं सहाबा पर कि 24 घंटे में एक खजूर, तो जंगे लड़ी है रूम और फारिस की सल्तनतों को उल्टा दिया उन्होंने, हर वक्त कुछ ना कुछ एक्चुअली पेट में होना। हम बचपन में डॉक्टरों से बहुत सुनते थे थोड़ा थोड़ा खाएं, पेट खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं भाई, कुछ अल्सर का मरीज होगा तो पेट खाली होने से नुकसान होता है, नॉर्मल आदमी का पेट खाली होने से कोई नुकसान बोलो नहीं हो, कुछ भी नहीं होता, ना मरेगा ना कमजोर होगा, जब आप खाएंगे ना वो रिकवरी खुद ब खुद हो जाती है। हां पेट खाली रहने से जब नुकसान होता है, जब कयामत तक खाली रहे कभी कुछ जाए नहीं उसमें, फिर तो मरेगा जाहिर है, खुराक तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। अगर भूखा रहने से सेहत को नुकसान होता तो इस्लाम में खाने के फजाइल होते, भूखे रहने के फजाइल नहीं होते। रमजान के रोजे ना होते इस्लाम में, पीर जुमेरात का रोजा ना होता, अय्यामे 20 के रोजे ना होते, फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत क्या थी? रमजान के तो रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर जुमेरात का भी रखते, आप महीने में 3 अय्यामे 20 के भी रखते, और इसके अलावा भी कभी रखते। तो हजरत आयशा फरमाती है ऐसे पे दर पे नफली रोजे रखना शुरू करते कि हमें लगता कि अब कभी नागा ही नहीं होगा, हमेशा रखेंगे रोजे, फिर छोड़ना शुरू करते तो ऐसा लगता कि कभी अब रखेंगे ही नहीं। ये भी एक मामूल है, कंटिन्यू रखना शुरू करते फिर कंटिन्यू छोड़ना शुरू करते। खाने का कहीं भी यहां तस्करा कहीं है कि खाना शुरू करते तो खाना ही खाते ही, ऐसा कहीं भी नहीं है। जितने पैगंबरों ने खाया है ना शदीद भूख में खाया है। हजरत मूसा अलैह सलाम और खजर अलैह सलाम का वाकया कुरान में, अल्लाह ने हजरत मूसा को खजर अलैह सलाम के पास भेजा। हजरत मूसा अपने खादिम को लेके सफर पे गए हैं, बहुत लंबा सफर, तो कुरान के अल्फाज आतीना गदा अना लकद लकीना मिन सफरीना हादा नसबा, जब शदीद थक्के चूर हो गए तो अपने खादिम से कहा ले आ खाना। क्या ले आ? खाना ले आ, हम बहुत शदीद थक गए हैं। इतनी थकावट और भूख के बाद जाके खादिम से कह रहे क्या ले आ भाई? खाना ले आ। तो खादिम ने कहा कि जो मछली आपने खाने के लिए रखी थी, अल्लाह ने कहा था कि एक अलामत बताई थी ना कि जिस जगह वो मछली जिंदा होके पानी में चली जाए तो वही जगह है खजर अलैहि सलाम की, तो वो तो पीछे है, मैं तो भूल ही गया था। फिर वापस चले उसी भूख की हालत में। तो हजरत मूसा को कोई नुकसान हुआ? इतने जबरदस्त पावरफुल पैगंबर थे मूसा अलैहि सलाम। हमारे नबी ने कितनी भूख बर्दाश्त की, सहाबा ने कितनी भूख बर्दाश्त की, फिर भी कितनी शादियां की हैं? चार चार शादियां। आज सुबह शाम पराठे भी फोड़ रहा है, निहारियां भी फोड़ रहा है, हलवे मांडे भी खा रहा है, मिठाई के पूरे पूरे डब्बे खा रहा है, लेकिन जब टेस्ट करवाता है ना तो कभी आयरन की कमी आ रही है, कभी जनाब वो उसकी सल्फर, वो उसकी वो क्या है यार, बाल, बहुत सारी चीजों की कमी आ रही है। पूरा सही पाकिस्तान में कोई भी बोलो, कैल्शियम की कमी आ रही है, मुख्तलिफ किस्म के विटामिन की कमी आ रही है। डॉक्टर फिर खिलवा रहे होते हैं कि ये खाएं आप, ये खाएं, वो भी कह रहे खाएं, मजीद क्या करें। वो एक आदमी हकीम के पास गया, हकीम से कहने लगा बदहजमी हो रही है, बहुत खा लिया। हकीम ने कहा ये दो गोली खा ले हाजमे की। उसने कहा इसकी जगह होती तो और ना खा लेता मैं, इसी वजह से तो बदहजमी हो रही है कि जगह नहीं छोड़ी। तो भूखा रहने से मेरे भाई कोई नुकसान नहीं होता, रह के देखो। तो अच्छा ये बात जहन में रखो, जब भूखा रहो ना बहुत ज्यादा और कम खाना करो तो फिर खाने का मैयार बढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसा ना हो खाना भी कम कर दो और खा भी वही रहो जो खा रहे हो अभी, तो फिर मार्केट से क्या हो जाओगे? शार्ट। सहाबा कम खाते थे लेकिन अच्छा खाते थे, पराठे मेरी तरह नहीं खाते थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब तो हमने भी फिलहाल छोड़े हुए रमजान में। तो ये ज़हन में रखना कि किसी सुन्नत को आधा फॉलो करें तो फिर फायदा नहीं होता। आपने चार शादियां कर ली सुन्नत की नियत से, अदल का जो हुक्म था वो वाली सुन्नत आपको याद नहीं रही तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। आपने जल्दी शादी पर बयान सुन लिया, ये वाला नहीं सुना कि अपने खर्चे पे करनी है, अब्बा के खर्चे पे नहीं, तो नुकसान होगा ना, अब्बा को टेंशन देगा जाके। तो आधा बयान सुनते हैं आधा रह जाता है। जिस दिन चार शादियों पे बयान होता है उस दिन आए हुए थे, जिस दिन हुकूक पर बयान हुआ उस दिन मार्केट से आप क्या थे? छाट थे, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर। जिस दिन बयान हुआ कि बालिग होते ही शादी करो उसमें तो आप आए हुए थे, अगले हफ्ते ये बयान था कि अपने खर्चे पे करो उसमें आप नहीं थे, तो अब्बा का खून पी रहे हो जाके। तो इसी तरह याद रखो कि ये जो हद इस्लाम में भूखा रहने की फजीलत है, फोड़ना फाड़ने को पसंद नहीं किया गया, रोजे रखो। हजरत दाऊद अलैह सलाम का रोजा देखो, हदीस में आता है बेहतरीन रोजा दाऊद अलैह सलाम का था, एक दिन रोजा एक दिन नागा। सारी जिंदगी दाऊद अलैह सलाम ने यह किया है, और जंगें कितनी लड़ी हैं। दाऊद अलैह सलाम तो मशहूर ही मुजाहिद होने के लिहाज से हैं, यहूदियों की कितनी बड़ी सल्तनत और रियासत कायम कर दी। जालूत जैसे पावरफुल कमांडर को कत्ल किया किसने? दाऊद ने। इतनी ताकत जंगों में, बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं। खा क्या रहे हैं? एक दिन रोजा एक दिन नागा, पूरी जिंदगी इस पर अमल किया है। तो इससे पता चलता है रोजा रखने से कोई कमजोर नहीं होता। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि वो कमजोर तो नहीं होता, लेकिन शरीयत को फिर पूरा फॉलो करो। हमारे नबी ने कम खाया है, सहाबा ने कम खाया, लेकिन जब खाया तो फिर अच्छा खाया है। आपने पता चला कम भी खाना शुरू कर दिया और खा यही बिरयानियां ही फोड़ रहे हो, ऑयल कुकिंग ऑयल जो आप खा रहे हो और लड्डू खा रहे हो, रसगुल्ले फोड़ रहे हो, तो फिर आप मार्केट से बहुत जल्द क्या होने वाले हो, शॉर्ट होने वाले। तो जब आप कम खाओगे तो फिर खाओगे क्या, मैं बता दूं आपको, क्योंकि अपने खर्चे पे खाना है, मेरे खर्चे पे थोड़ी खाना है आपने। ऐसा ना हो आप मुझसे आ जाओ कि आपने मशवरा दिया था तो पैसे दे, खाना आपने अपने खर्चे पे ही है। तो फिर जैतून खाओ, कुरान में किसकी तारीफ है, जैतून की। अनार खाओ, नबी ने फरमाया हर अनार में एक दाना ऐसा होता है जो जन्नत का है। क्या मतलब, तरगीब दी जा रही है पूरा अनार खाओ छोड़ो नहीं, हो सकता है वो दाना जन्नत से आया हो, बरकत है उसमें। और इंजीर की कुरान ने तारीफ की है, वतीन वज़ैतून, जैतून की कसम, इंजीर की कसम, जैतून कभी पका के नहीं खाना है, समझ आ रही बात, कच्चा खाना है। और मेरे भाई नबी ने ऊंट का गोश्त खाया है, नबी ने बकरे का शाना खाया है, जो बकरे का गोश्त आपको बहुत पसंद था, जो दस्ती का गोश्त जिसे कहा जाता है, आगे वाला हिस्सा जो होता है ना, उसका गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था। बाबू माजा आफिन हशुल लहम नहशन, तिर्मिजी में हदीस है इस बारे में, बाप के गोश्त को दांतों से नोच के खाओ। क्योंकि हमारे नबी क्या कर रहे थे, कभी आपने छुरी से भी काट के खाया और कभी आपने डायरेक्ट दांत से भी, तो साहबा ने इसको भी बयान किया और मुहदिसीन ने बाप बांध दिया। समझते हो कि नहीं समझते, तो ये चीजें हमारे पैगंबर ने खाई है, जौ की रोटी खाई है, हम बगैर छना सफेद आटा फोड़ते हैं, खाते वाते तो है ही नहीं ना, क्या करते हैं हम, एक तो गंदम ऊपर से वो भी सफेद आटे वाली, फिर कहते हैं पेट में पता नहीं मसले ही हल नहीं हो रहे पेट के हमारे, वजू ही नहीं ठहरता मुफ्ती साहब, नमाज कैसे पढ़ू मैं, तो वजू तुम्हारा ठहरेगा कहां से, कहते हैं कि हमारा वजू ठहरता ही नहीं। जब बहुत ज्यादा कोई तंग करता है तो मैं कहता हूं एक ही ऑप्शन रह गया, या तो अपने पेट का इलाज करा ले भाई, या फिर ये कर ले। अच्छा वो क्या था, मैं बात क्या कर रहा था यार, हां तो मैं ये कर रहा था कि जो पेट का साइज है ना वो भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। फिर बार बार कहूं किसी का पेट निकला हुआ है तो बदगुमान मत हो, कराची में वैसे भी पानी ऐसा है कि पेट निकलते हैं लोगों के, चाहे जितनी भी अच्छी सेहत हो, तो बदगुमान होने की इजाजत नहीं है। अपने बारे में बदगुमान हो कि मेरा पेट क्यों निकला हुआ है, बस अपने बारे में, दूसरे के बारे में सोचना हराम है, नाजायज है। शरीयत ने कहा है कि बदगुमानी मत करो, आप सोचो भाई इसका मसला है, आप अपने पेट के बारे में कि मैं कोई ऐसा तो नहीं कर रहा कि सुबह शाम फोड़ता फाड़ता रहता हूं जिसकी वजह से आज मैं यहां आ गया हूं। अच्छा भाई तो मैं यस कर रहा था कि जो पतला होता है ना वो मुश्किल जरा जरा निकल लेता है, तो मैं यस कर रहा था, असल में सरिये की मिसाल दे रहा था। तो सरिया वाला आपको ये नहीं बताएगा कि अबे तेरी उम्र कितनी है और तू मुझसे इतना टन सरिया क्यों खरीद रहा है, वो ये बातें नहीं करे। ये बातें पैगंबरों की हैं और पैगंबरों के वारिसों की हैं, वो बार बार बताते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, रहने की जगह नहीं है। और दो मिनट में बस बात को समेट के खत्म कर रहा हूं। अब मैं जो असल बात लेके चला था, सवाल पैदा होता है जब इससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो दुनिया छिनने पे गम तो होगा। तो बात ये है, ये आपने निहारी के पैसे दिए, वो खाना ही नहीं लेके आ रहा, आपको टेंशन होगी। ये टेंशन होना क्या है, ये नेचुरल है। अब पैसे दिए, वो निहारी लेकर आया, आपने तबीयत से फोड़ा, एक ग्रेवी भी चलती है वो भी ले आया, उसके बाद मजेद ग्रेवियां मांग रहे हो आप, वो कह रहे क्या चीज ग्रेवियां ही खाएगा यहां बैठ गए, और अब आपको गुस्सा आ रहा है ग्रेवी क्यों नहीं मिल रही, दिमाग की रग फड़क रही है। अब ये आपका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है, ये उसका हेडेक नहीं है, ये आपने खुद टेंशन पाली हुई है। अब भाई तूने पैसे दे दिए, एक ग्रेवी भी बनती थी वो भी, अब मजीद ग्रेवियों पर ग्रेवियां क्या होता है यार, ऐसे कंजूस मैंने देखे हैं, ग्रेवी से शुरू करते हैं वो, 10 आदमी पहुंच जाएंगे एक प्लेट मंगवा के ग्रेवियां। तो याद रखो कुछ हमारी बुनियादी जरूरतें, दो वक्त रोटी मिल जाए ये हमारी बुनियादी बोलो ना जरूरत, दुनिया इतनी छिन जाए कि रोटी से भी गए खाने से भी गए फिर टेंशन होना ठीक है, क्योंकि ये पेट की जरूरत है। सर छुपाने के लिए जगह, जहां हम रात को सुकून की नींद सो सकें, मच्छरों से, गर्मी सर्दी से, बारिश से हमारी हिफाजत हो, ये हमारी बुनियादी जरूरत है, चाहे अपना घर हो चाहे किराए का हो, लेकिन ऐसी रात को जगह मिल जाए, ये हमारी बुनियादी जरूरत। घर ही नहीं है ना किराए का ना अपना, टेंशन होना ठीक है, ये बनता है भाई। जाहिर कहां रोड पे थोड़ी सोएगा, बीवी बच्चों के साथ कहां सोएगा, अकेला के लिए तो ये भी जरूरी नहीं है, कल्ला आदमी तो कहीं भी सो जाए, लेकिन जब बीवी बच्चों को भी तो जगह देनी है ना। और तीसरी बात, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज, तकलीफ दे बीमारी ना हो। आपको कोई तकलीफ दे बीमारी है, इलाज के पैसे नहीं है, टेंशन होना बनता है। बस ये तीन चीजें ही है आपकी जरूरत, बच्चों की फीस, स्कूल, कन्वेंस, ये सब गरीबियां हैं, मिल जाए ठीक, नहीं मिले मुंह से निकल नहीं रहा यार, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले टेंशन लेने का नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। पैसा अल्लाह दे रहा है तो बच्चों को स्कूल भी पढ़ाओ, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, टमाटर बेचेंगे यार, क्या है तो टमाटर वाले नहीं मरते क्या, रक्षे वाले क्या जहन्नम में जाएंगे? कोई सक्सेस और ये नाकामी वकामी जो कहते हैं ना, ये रक्षे वाले नाकाम और टमाटर वाले नाकाम और मैंने पैसा कमा लिया मैं कामयाब, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अभी मरेगा तेरी लाश में कमबख्त कीड़े पड़ेंगे, कारून नहीं बचा सका अपने आप को, थोड़े दिन के खेल है, तू लैंड क्रूजर में घूम रहा है और जहाजों में उड़ रहा है, ये थोड़े दिन की कहानी है, अभी जनाजे आ जाएगा थोड़े दिनों में, यही आएगा हमारे पास ही आएगा जनाजा। मौली साहब बंदे का इंतकाल हो गया, मैं तो जनाजे में नहीं पूछता, रक्षे वाले का है कि ये जहाज पायलट का है, जो भी है अब तो जनाजा ही है भाई, गुसल कफन करो, दफन कराओ, दुआए मफरत करो, पतली गली से निकलो, ऐसी की तैसी। तो टके की औकात नहीं है यार, बातें कर रहे हो बैठ के पैसा कमाने का तरीका, एक्चुअली सक्सेस कामयाबी टोपी ड्रामे। इसके अलावा जो टेंशन ले रहे हो ये आपकी अपनी टेंशन है, ये हवस है, ये अल्लाह की बनाई हुई नहीं है। अब आप कहते हो यार हम तो गुजारा कर लेते हैं, बेगम गुजारा नहीं करती, तो बेगम कौन सा आपकी मजबूरी है, गुजारा करे तो ठीक है, नहीं है तो यार विदाउट बेगम लेस जिंदगी गुजारो। अब आप कहोगे भाई बेगम लेस जिंदगी में जब ख्वाहिशात नफसानियां पैदा होंगी तो मैं क्या करूंगा, वो भी तो वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, क्या मैं जिना की तरफ जाऊं, वो टेंशन वाकई टेंशन है, क्योंकि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे भूख लगती है बर्दाश्त नहीं होती, ख्वाहिश नफ भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन उसके लिए अल्लाह ने एक तसल्ली दे दी कि जो गरीब आदमी निकाह की कोशिश करेगा इसलिए कि जिना से बचूं, अल्लाह ने उसकी मदद का वादा किया है, ऐसी औरत मिल जाएगी जो इस गुर्बत में गुजारा कर लेगी आपके साथ। क्या मतलब, बेसिक जरूरतें पूरी करने का अल्लाह ने वादा कर लिया, लेकिन अल्लाह ने कह दिया कुरान में जिना के करीब नहीं जाना, रिश्ता नहीं मिल रहा ना कोई बात नहीं, मैं इसी गुर्बत में तुम्हारे लिए कोई ऐसी दिला दूंगा, गुजारा हो जाएगा, जिना से बच जाओगे, नहीं बच रहे तो भी ठहरक है ये। लेकिन गरीब आदमी के नखरे देखो, गरीब आदमी को तो नखरे है इतने आजकल, वो कह रहा है नहीं भाई मैं कैसे यार, मैं गरीब पे कैसे गुजारा करूं, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और चूंकि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, फिर जिना की तरफ जा रहा है। ओ भाई तूने अपना इतना ऊंचा मयार, जितनी भी कैसी भी खूबसूरत औरत हो थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, मरेगी, ये मुसाफिर खाना है भाई, ये क्या है मुसाफिर खाना है, टाइम पास करो, ज्यादा दिया तो ज्यादा, जैसे बस में सफर कर रहे हो तो अल्लाह ने पैसे दिए तो आप जहाज में बिजनेस क्लास में बैठ जाते हो, नहीं दिए तो वो इकोनॉमी में आगे बैठ जाओगे, क्या ख्याल है, वो भी नहीं है तो ट्रेन में बैठोगे, वो भी नहीं है तो बस में जाओगे, वो भी नहीं है तो गधा गाड़ी लोगे किसी से और क्या करोगे, पैदल जाओगे, नहीं तो बैठे रहोगे आराम से, यार इधर ही रहेंगे हम, नहीं आ रहे बस पैसे ही नहीं है। तो हमारी बेसिक जरूरतें कितनी है टोटल, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज, नंबर दो, दो वक्त खाना मिल जाए, हमारे नबी तो एक वक्त खाते थे लेकिन चलो हम कम से कम दो वक्त, तीसरा सर छुपाने के लिए, इसके अलावा सब क्या है गरीबियां। फिर अगर कोई ताना देता है ना तो तू नाकाम है तो कह दिया करें, एहसास से कमतरी में ना जाए, बोले तू देखते अभी कितना कामयाब है, थोड़े दिनों में तू लेटने वाला है, ठीक है ना, जनाजा आएगा। और मालदार आमतौर पर जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि अय्याशी के मौके उनके पास ज्यादा होते हैं, उनके परहेज करना भी जरा मुश्किल होता है एक्चुअली उनके लिए। तो इसलिए भाई टेंशन लेने का नहीं है। तो बात कहां से चली थी, बस ये रमजान में अल्लाह चाहते हैं गुनाह छोड़ो, तो मैं उसको लेकर चला था कि गुनाहों की दो किस्में, एक अंदर के गुनाह एक बाहर के गुनाह। तो अंदर के जो गुनाह हैं उनमें सबसे बदतरीन गुनाह है दुनिया से मोहब्बत, इसको निकालो दिल से, खन्नास को निकालो। समझते हो अल्लाह ताला समझने की और खोपड़ी को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला। भाई जल्दी से यार, ये जो मसाइल बहुत ज्यादा जमा हो गए हैं। मुफ्ती साहब, जन्नत की जिंदगी कैसी होगी? इस पे मुस्तकिल बयान करेंगे यार। अगर यकीदा रखा जाए कि हमें उस वली के सदके में अल्लाह हमें दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है वली के सदके में दे रहा है? इसका मतलब मुझे नहीं पता। कहने वाले की नीयत क्या होती है इन अल्फाज से? उसके सदके में दे रहा है, क्या मतलब उसके सदके में? जिस बात का मतलब ही नहीं पता उस पे आदमी कैसे हुक्म लगाए कि जायज है कि नाजायज है? मुफ्ती साहब, मैं आपको अपना रहबर मानता हूं, आपके बयान ने मेरी जिंदगी बदली। अगले महीने मेरा निकाह है, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा निकाह पढ़ाएं, वलीद से राब्ता कर लें। निकाह जिसने पढ़वाना हो, यहां वलीद का नंबर है, उससे राब्ता कर लें। मुफ्ती साहब, मुशरिक की इस्लाह करने के बाद भी वो तौहीद पर ना आए तो इससे मुशरिक होने की वजह बेस पे नफरत करना कैसा है? छोड़ दें उसको अपने हाल पे, नफरत करके क्या करना है? इतने मुशरिक पड़े हुए, किस किस से नफरत करेंगे भाई? इस्लाम में पैंट का क्या लिखा है? पैंट शर्ट का शरी हुक्म क्या है? बेहतर नहीं है लेकिन जायज है। बेहतर है अपना लिबास पहनो, सलवार कमीज यार। नेक और सेहतमंद औलाद के लिए दुआ कीजिए और रिस्क में कुशादगी के लिए, और अल्लाह उम्र की तौफीक अता फरमाए। दिल से दुआ, अल्लाह सारी दुआएं कबूल फरमाए, सारी ख्वाहिशात आपकी पूरी फरमाए। रोजे की हालत में, अरे क्या, एक तो हम बिस्तरी लिखा हुआ है वो भी इंग्लिश में, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कर सकते हैं नहीं कर सकते, खुदा के बंदो 60 रोजों का कफारा है अगर रमजान के रोजे में कर लिया ये काम। अच्छा, दूसरे सवाल भी थे, एक ही पढ़ा है मैंने। मुफ्ती साहब, सिर्फ में कोई यार, उर्दू तो कम से कम उर्दू में लिख लिया करो ना। उर्दू तो उर्दू में लिख लो, इंग्लिश इंग्लिश में लिखो, लेकिन उर्दू उर्दू में लिखो। तो रोमन में और इतनी गंदी राइटिंग में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। मुफ्ती साहब, ऐसा ये क्या, फिर वही मसला। आगा जी, लड़के की शादी में वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कीड़े मकोड़े हैं। ये भी ये एक ही बंदे की राइटिंग है, सारी पूरी राइटिंग एक ही बंदे की है, एक ही बंदा है। मुफ्ती साहब, ऑस्ट्रेलिया से मेहमान मिलने आए हैं, कहाँ हैं ऑस्ट्रेलिया वाले जो आए? हाँ, 5 मिनट के लिए मिल लिएगा, ठीक है, फिर खुद ही तशरीफ ले जाइएगा। अगर मैं कहूं भी ना मजीद बैठे तो आपने कहना बस हम जा रहे हैं, ठीक है, तो 5 मिनट के लिए। मैं बार दफा कह देता हूं बैठे हैं, वो बैठ ही जाते हैं फिर, तो इसके बाद जो है ना दफ्तर में बिठा दें इनको, 5 मिनट के लिए मिल लेंगे। पहली दफा में जब किसी को चाय का पूछा जाए ना, फौरन ना हां कर दिया करे, बार दफा आदमी वैसे ही पूछ रहा होता है, जाना हाँ चलो ठीक है। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि क्या जकात अपने किसी बहन या भाई को दें तो बिना बताएं देना जायज है? जी जायज है, हदीये के नाम पे दे दें, दिल में जकात की नियत कर लें। और क्या जकात 2 हिस्सों में देना जायज है? मेरे ऊपर जितनी जकात बनती है इतने पैसे अभी नहीं है, 2 हिस्सों में भी दे सकते हैं, 3 हिस्सों में भी दे सकते हैं। दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, भाई ने बीमार है बेचारे। मुफ्ती साहब, दरस निजामी के साथ कारोबार करना कैसा है, यानी आलिम बनने के साथ? अब हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं, तो बाज लोगों का तवक्कुल का लेवल बहुत ऊंचा होता है, वो कहते हैं हम नहीं कुछ करेंगे, वह दीन की खिदमत करेंगे, लेकिन नॉर्मली तो अपना कमाओ यार। हजरत, ये रोजा है भाई, रमजान है। हजरत भूल गए बेचारे, मैं तो गलती से पी लेता। माशाल्लाह, ठीक है ठीक है, टाइट हो गया, टेंट हो गया, टेंट मंडाई। दिल्ली बंबई वाले बोलते हैं क्या बोलता है भंडाई, ये आजकल चल रहा है वहां बंबई में, क्या बोलता है भंडाई, भंडा बोलते हैं, क्या बोलता है भंडाई। अच्छा भाई इधर से निजामी के कारोबार करना है तो कर लो, लेकिन फिर इधर का कारोबार ऐसा करो जिसमें टाइम ना लगाना पड़े। मैं भी करता हूँ कारोबार, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा मैं करता कब हूँ। इन्वेस्ट कर दिए तो कुछ ईमानदार लोग मिल गए जो कि पाकिस्तान में मिलते नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर अल्लाह का फजल हो गया, बहुत कुछ तबाह होने के बाद मुझे दो चार ईमानदार लोग मिल गए, तो फिर मैं उन पे एतमाद करता हूँ, लगाते रहो, खुद ही खरीदते रहो बेचते रहो। तो ऐसे मार्केट में मिल जाते हैं बाज दफा, लेकिन बहुत कम है। आप खुदा के लिए तजर्बा नहीं करना, हमें तो बड़े अरसे बाद मिले हैं, और फिर शोहरत हो जाती है तो और इंसान के ताल्लुकात बढ़ जाते हैं ना, फिर उसमें मिलना आसान हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे कारोबार कर लो कि टाइम ना लगाना पड़े तो फिर करना चाहिए, उलमा को भी करना चाहिए, जरूरी है। अपना खाए अपना पिए, मौज अच्छी जिंदगी गुजारे, चंदों पे नहीं होता इंसान। और वैसे भी अपनी जात के लिए तो चंदा वैसे ही हराम है ना, तो वो तो वैसे ही जायज नहीं है। हमारी जमात आपसे मिलना चाहती है, रावलपिंडी से कहां है भाई, आप लोग भी 5 मिनट के लिए वहां चले जाना, खुद ही चले जाना फिर। अच्छा भाई बिजली के बिल को ड्यू डेट पर अदा कर सकते हैं क्या? ये सूद नहीं, सूद है और क्या है, लेकिन अब ये कि जब हो गया वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा आपको। बाल और नाखून वगैरह को दफनाना चाहिए या दरिया में फेंक दें? यानी बाल काट के नाखून काट के दरिया सिंध जाएगा कराची से फेंकने के लिए? भाई इधर ही फेंक दो यार, वॉशरूम में ना फेंको, क्योंकि इंसानी आजा है, जिस्म से निकला हुआ एक चीज है, तो इतनी उसकी तौहीन ठीक नहीं है, लेकिन कचरे में फेंक सकते हैं। मेरी बेगम मुझसे पूछती है कि मुफ्ती साहब मसाइल के वक्त तर्ज क्यों बदल देते हैं? थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाता है ना, हमारी मर्जी। हम तो मुफ्ती साहब तलाक के बाद अगर शौहर बच्चे का खर्चा नहीं उठाता तो 7 साल के बाद उसका हक बनता है कि वो बच्चा लेकर जाए या नहीं? शौहर पर लाजिम है कि वो तलाक के बाद बच्चे का खर्चा उठाए, और बीवी पर लाजिम है कि 7 साल के बाद बच्चा शौहर के हवाले कर। जब बच्चा छोटा था तो माँ के साथ रहेगा, बाप मिलता रहेगा, जब 7 साल का हो जाएगा तो बाप के साथ रहेगा, माँ उससे मिलती रहेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस जिसका कब्जा हो गया वही रखता है उसको, ये जुल्म है। और अगर वो शुरू में कहे कि जिरगे में कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं बच्चे का खर्चा नहीं दूंगा, तो 7 साल के बाद बच्चा उसका होगा या नहीं? फिर भी उसको खर्चा देना पड़ेगा और बच्चा लेना भी पड़ेगा, ये ऑप्शनल नहीं है कि बाप बच्चे को लेना चाहता है कि नहीं चाहता। नहीं चाहता तो भी लेना पड़ेगा उसको, नहीं आई बात समझ में? आपके बच्चा पैदा हो गया, आप कह रहे हैं मैं नहीं चाहता, तो एक्चुअली मैं आप पाल लो इसको, या इसको ईदी सेंटर में जमा करा दो, ऐसा नहीं होगा, आपके बाप को भी पालना पड़ेगा। तो इसी तरह जब 7 साल का हो जाए ना बच्चा, तो बाप अगर कहता है मैं नहीं लूंगा, तो शरीयत कहती है आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ना लेने में बच्चे का नुकसान है। समझते हो कि नहीं समझते? तो बचपन में मां के साथ, क्योंकि अब बच्चे की भी तो राइट है ना कुछ इस्लाम में, बच्चे का हक यह है कि बचपन में मां की गोद मिले उसको, और जब वो समझदार होने लगे तो बाप का साया मिले उसको, क्योंकि बचपन में उसको तरबियत की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है मां की गोद की, खुराक की, ये काम मां ज्यादा अच्छा कर सकती है। और जब बड़ा हो जाता है 7 साल का, अब उसको तरबियत की जरूरत है, तो ये काम मां से ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है? बाप। वजह उसकी ये, ख्वातीन कहेंगी भाई वो क्यों ज्यादा अच्छा कर सकता है, उसका रोब है, मां का रोब नहीं होता, वो आंखें दिखाएगा डर जाएगा बच्चा। ये जो है ना अंग्रेज, मोटिवेट करो बच्चों को, मोटिवेट करो, खाली मोटिवेट नहीं होता, आंखें भी दिखानी पड़ती है बच्चों को, रोब भी होता है। तो बाप का रोब होता है, उसकी आवाज में अल्लाह ने गरज रखी, यूं करके आंखें दिखाएगा इंसान का बच्चा बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा बच्चों को मारा पीटा करें, लेकिन आंखें तो दिखानी पड़ती है ना। तो हमने देखा है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं अगर बाप तरबियत की फिक्र न करे, तो माओं के हवाले कर देते, माओ का रोब नहीं होता, तो बच्चे बागी बन जाते हैं, बाप का रोब होता है। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको जरूरत है बाप की, तो इस्लाम कहता है बच्चे किसके हवाले किए जाएं, और बाप को जबरदस्ती लेना पड़ेगा, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, तो खर्चा भी देगा और लेगा भी, जो दोनों काम उसके जिम्मे हैं। अगर इस टाइम पेपर पर ये बात तय हो जाए कि बच्चा कभी भी शौहर नहीं लेगा, तो ये काम जायज है या नहीं? नहीं, ये जायज नहीं है। इस टाइम पेपर से बच्चे का थोड़ी नुकसान पहुंचा सकते हो। अगर इस स्टैम्प पेपर पे मियां बीवी तय कर लें बच्चा हमने वसीम भाई को देना है, तो बच्चा कहेगा तुमने मेरे लिए एग्रीमेंट कैसे कर लिया मुझसे पूछे बगैर, ठीक है? तो बच्चे को बाप की भी जरूरत है मां की भी जरूरत, तो ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते वो, इस एग्रीमेंट की कोई शरी हैसियत नहीं है, स्टैंप पेपर पे भी हो जाए। तलाक के बाद जो लड़की का सामान है कमरे में वो सारा सामान लड़की का शुमार होगा, या जो सामान शौहर ने शादी के बाद खरीदा हो वो मसलन बैटरी और बैटरी का पंखा, शुक्र है कुछ तो खरीदा इसने, ये शादी के बाद इन्होंने खरीदा है बैटरी और बैटरी का पंखा, बाकी सारा बेगम ने ली, वो सामान तलाक के बाद लड़की का ही है शौहर का। जो लड़की को अब्बा के घर से मिला वो तो सारा लड़की का है, जो लड़के ने बीवी के लिए बनाया वो सामान जो लेडीज ही इस्तेमाल करती हैं, चूड़ियां उड़ियां हो गई, जेवर हो गया, कपड़े हो गए, वो भी बीवी का है, लेकिन इसके अलावा जो सामान है बैटरी पंखा ये शौहर की मिल्कियत में होती है ये चीजें, तो ये शौहर की मिल्कियत में, ये बेगम अपने साथ नहीं ले जा सकती, वरना तलाके होंगी खोले होंगे औरतें पंखे भी उठा के लेके जा रही होंगी, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा करोगे तो कोई भी नहीं आएगा। बीवी को इस तरह कहना कि तुझे तीन तलाक, तो क्या इससे तलाक होगी, इससे भी नहीं होगी तो फिर किससे होगी मेरे भाई, इतने सरी अल्फाज से बीवी को कह रहे तुम्हें तीन तलाक, तो कह रहे हैं कि इससे होगी कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी इससे। अच्छा मेरे भाई हयातुन नबी का अकीदा बयान करें, हयातुन नबी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में बरज़खी हयात के साथ जिंदा हैं, लेकिन वो आम मुर्दों जैसी हयात नहीं है, उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन है वो बरज़खी हयात। मुहन्नद अल मुफन्नद में जो लिखा है दुनियावी बरज़खी, तो वो दुनियावी से मुराद है दुनियावी की से तशबी दी गई है कि दुनियावी जैसी है, हकीकत में दुनियावी नहीं है। जब किसी को तशबी दी जाती है ना, जैसे आपने कह दिया जैद शेर जैसा है, तो मतलब है कि शेर नहीं है, वरना जैसा थोड़ी लगाया जाता। तो उलमाए देवबंद मानते हैं कि नबी को जो कब्र में हयात मिली है वो दुनियावी हयात नहीं है, लेकिन बात चीजों में दुनियावी जैसी है। जैसी कैसे, जैसे हम दुनिया में जब जिंदा होते हैं तो हमारी बॉडी खराब नहीं होती, तो पैगंबरों की का जसद भी कब्र में हमेशा महफूज रहता है। जैसे कि एक हदीस में भी आता है कि अल्लाह ने पैगंबरों के मिट्टी पर पैगंबरों के जिस्म को हराम कर दिया है, पैगंबर का बिल्कुल ताजा जिस्म रहता है। आज भी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में बिल्कुल उसी तरह आपकी जिस्म सलामत है जैसा जिंदगी में था। तो एक बात तो ये, दूसरा जब नबी के कब्र पे खड़े होकर सलाम पढ़ा जाता है तो सही हदीस से ये बात साबित है कि आप उस सलाम को बनफ्से नफीस सुनते हैं, ये भी एक मोजज़ाती तौर पर है। तो चंद चीजों में उसको दुनियावी से तशबीह दी गई है, तो इसलिए दुनियावी जैसा कह दिया गया, वरना हकीकत में वो दुनियावी नहीं है, बरज़खी हयात है, लेकिन पावरफुल शोहदा की हयात से भी बढ़कर है वो। तो ये अकीदा है। मुफ्ती साहब क्या किसी गुना से नेकियां जाय हो जाती हैं? जिया हो जाती हैं। जैद इब्ने अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मामला किया, वो सूदी लेन देन था, उनको पता नहीं था कि ये सूद है। हजरत आयशा ने फरमाया कि जैद इब्ने अरकम को बताओ कि तुमने अगर ये सूदी लेन देन कर लिया तो तुमने जो नबी के साथ मिलकर जिहाद किया है ना, अल्लाह उस जिहाद के अजर को जाया कर देगा। तो जैसे नेकियां बुराइयों को खाती हैं, बुराइयां नेकियों को खाती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को खा के खत्म करते हैं। जब आप नेकी करते हैं तो गुनाह माफ होता है उससे, और जब गुनाह करते हैं तो कोई नेकी जाया हो रही होती है। गुर्दे के मरीज के लिए रोजे का क्या हुक्म है? रोजा रखने से अगर उसको नुकसान हो रहा है तो छोड़ सकता है भाई, वरना नहीं छोड़ सकता। मुफ्ती साहब मेरे एक रिश्तेदार, ये जो मैं टोन चेंज कर लेता हूं ना थकावट की वजह से, वो खातून ने पूछा ना तर्ज क्यों बदल देते हैं, तो तर्ज इसलिए बदलता हूं ताकि पढ़ लूं मैं, सुर लगा के जरा पढ़ लिया जाता है आराम से। देखो वो मजबूरी में स्टाइल बनता है ना। मुफ्ती साहब मेरे एक, अब मैं ऐसे खबरनामे की तरह पढ़ूंगा तो गला भी थकेगा और टेंशन भी होगी, वही आ रहा, ज्यादा सुर आ रहा है। मुफ्ती साहब मेरे एक, ये क्या लिखा है यार, पता नहीं, रिश्तेदार की बेटी तलाक याफ्ता है और इसके वाले साहब भी नहीं है, तो मैंने अपने घर में कहा है कि मैं निकाह इस लड़की से कर दो मेरा निकाह, तो इस बात पर मेरे वाले साहब कहने लगे कि हम नहीं करेंगे, हमारा नाम खराब होगा, हमारी बदनामी होगी, तो आप बता दें मैं क्या करूं, मेरी उम्र 25 साल है और उस लड़की की उम्र 28 साल है, मेरा अपना कारोबार है। भाई बदनाम वाले साहब को बता दें, बदनाम नहीं होंगे, इज्जत होगी अकलमंदों की नजर में, ایک طلاق یافتہ سے شادی کی ہے, ان سے ملی ہے. باپ بھی فخر سے بتایا, یار میرا بیٹے نے شادی کس سے کی ہے؟ طلاق یافتہ. یہ عزت کی بات ہے, یہ ذلت کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور شادی بھی کر لینا, ابا کو بتا دیں, چار شادیاں کر لینا, تو اس سے عزت سوسائٹی میں اور زیادہ بڑھنی چاہیے. بڑھے گی پھر بھی نہیں, لیکن بڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ابا کو سمجھائیں, ابا مان جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ عزت نزت کی یہ ایسی ہے نا, شادی کرو جہاں سمجھ میں آ رہا ہے. جن لوگوں نے عزت کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں نا, عزت بھی گئی اور شادی بھی نہیں ہوئی. عزت آنے جانے, ہمارے شاگرد ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, بڑے فری اسٹائل تھے وہ, اب بھی ہیں, اب تو ٹیچر بن گئے, 20 سال سے پڑھا رہے ہیں جامعۃ الرشید میں. کلاس فیلو تھے ہمارے نا, تو وہ ہمیں کبھی استاد کوئی ڈانٹتے کسی غلطی پہ, ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی نا, بہت کبھی دکھ بھی ہوتا, کبھی ٹینشن بھی ہوتی. وہ بندہ ایسا تھا, اس کو استاد جتنا مرضی ڈانٹے, کتنے مرضی تانے دیں, ان پہ کوئی اثر ہی نہیں. تو میں نے کہا یار آپ پہ کچھ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, آپ کو اتنا ایک قسم کی بےزتی کر دی. استادوں کے ڈانٹنے سے بےعزتی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال کبھی کبھار فیل تو ہوتی ہے نا کہ حد زیادہ ہو گیا. تو وہ جملہ کہتے تھے, عزت ہمیشہ یاد رکھو آنے جانے والی چیز ہے, کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. تو جو آنے والی چیز ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی. بڑا اچھا لگتا تھا مجھے ان کا یہ ملفوظ کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے. ایک آدمی کسی محلے میں گیا, پھر آ کے تبصرہ کرنے لگا, اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا یار یہ تو غم کی بات ہے کہ تیری عزت نہیں ہے, خوشی کیوں منا رہا ہے؟ کہہ رہے عزت ہوتی نا تو آج بہت ذلیل ہو جاتا میں, کچھ ایسا کام کر لیا ہے جس سے کیا ہو جاتا, لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں لہذا ذلیل بھی نہیں ہوئے. الٹا کام کرنے سے عزت دار آدمی ذلیل ہوتا ہے نا, جو پہلے سے ذلیل ہو وہ ذلیل ہوتا ہے, بولو نا. دیکھو میں نے جب دوسری شادی کی تھی میں بہت ذلیل ہو گیا تھا, طبیعت سے ذلیل ہوا تھا میں. جب ہو گیا نا پھر تیسری پہ وہ ذلیل نہیں ہوا میں, کیونکہ وہ جو جتنا ہونا تھا وہ میں دوسری پہ بولو ہو چکا تھا. تو پھر جب تیسری کی ہے تو پھر نہیں ہوا میں ذلیل, کیونکہ وہ ہو چکا تھا میں ذلیل. تو کتے کو کتا بولو, کتے کو بے عزتی محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی, وہ تو ہے ہی کتا, اس کو پتا ہے یار میں تو کتا ہوں. کچھ اور بولو گے تو, چوہا بولو گے تو شاید اس کو غصہ آ جائے. تو کچھ کام, میں نہیں کہہ رہا کہ ذلیلوں والے کام کرنا شروع کر دو, لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے اس میں عزت ہے لیکن لوگوں کو اس میں ذلت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ کر لو آپ, وہ کر کے جتنی بے عزتی ہونی ہے ہو جائے گی, اس کے بعد آپ بے عزتی لیس ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ کام کرنے سے بے عزتی نہیں ہوگی. تو آپ یہ جو صاحب ہیں اس بیوہ سے شادی کر لیں, یہ طلاق یافتہ سے, ایک دفعہ طبیعت سے بے عزتی ہو جائے گی, پھر جتنی بھی شادیاں کریں گے بے عزتی نہیں ہوگی, کیونکہ عزت ہوگی ہی نہیں تو بے عزتی کا خوف بھی نہیں ہوگا. ایک دفعہ کر لیں, لیکن بیویاں مل جائیں گی آپ کو, یہ ٹائٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہم لوگ بچپن میں ٹائٹ کو بولتے تھے ٹینٹ ہو گیا, ٹینٹ بچپن میں ہم بولتے تھے ٹائٹ کو, کیا ہو گیا؟ ٹینٹ ہو گیا. تو مجھے وہی لگتا ہے کہ ٹینٹ ہو جائے گا, ٹینٹ. اچھا میرے بھائی, میرا ایک دوست تائیوان میں ہے, انہوں نے مجھے مدرسے کے لیے پیسے بھجوائے ہیں, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ ثواب ملے گا. میں نے کہا آپ کو ملے گا, کیا کرنا ہے, اللہ کی مرضی, جس کو زیادہ ثواب دے دے, دونوں کو ملے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب میرے یہ تو ہو گیا مسئلہ نا, بس مسائل ختم ہو گئے. چلو